فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میں آپ کو خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں, میری کوئی پارٹی آئی لو پاکستان, مگر پاکستان میں جیسے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں اگر ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہم کسی خاص ادارے کا برا نہیں کہتے. پولیٹیشنز اگر غلط ہیں تو پولیٹیشنز کو غلط کہیں. ابھی اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. آپ پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا, آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہ جو ہمارے وڈیرے ہیں انہوں نے جو ہپوکریسی عوام تک منتقل کر دی ہے, ہم جعلی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اگر کوئی ایمانداری سے حقیقی طور پہ آپ کے سامنے آتا ہے تو بعض لوگ بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں. ٹویٹر پہ جب آپ جائیے گا تو آپ ایک قوم کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. پلیز اپنے الفاظ کو ضرور مائنڈ کیجیے گا کہ ہم کیا الفاظ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ تمام نمائندے ہیں اس قوم کے, ہماری ویلیوز کے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
برمپٹن سڑکاں فٹ پاتھاں اتے بس سٹاپ دے سردیاں دے رکھ رکھاو دے کانٹریکٹ دا نویکرن کرن جا رہا ہے اتے اے جاننا چاہندا ہے کی شہر دے نواسی انہاں سیواواں دا بھگتان کرن لئی تیار ہن, پر نام سروپ نواسیاں دے لئی ٹیکسز ودھ سکدے نے پر ساریاں پرواراں نوں اے سیوا دا لابھ نہیں مل سکدا. سارے فٹ پاتھاں نوں صاف کرن لئی سالانہ 2.6 million dollars دا خرچہ آندا ہے, $12 ہر پروار نوں ان ٹیکس کوسٹ ایوریج پوے گا. ڈرائی وے تو برف صاف کرن لئی اس دی قیمت 19.6 million dollars پرتی سال ہوئے گی. تے اپنے سجھاؤ دین لئی اج ہی وزٹ کرو brampton.ca/engage.
ٹرک کا گھومتا پہیہ کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک لیو تھرو آؤٹ انٹیریو, نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ, ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان ناپنی. کوئک ٹرک لیو 519-622-0660, quicktruckloop.com.
الہدا انسٹیٹیوٹ کینیڈا پیش کرتے ہیں ویسٹرن کینیڈا ٹور 2024 وتھ ڈاکٹر فرد ہاشمی اینڈ ڈاکٹر ادریس زبیر. یہ ٹور 29 June سیٹرڈے کے دن کیلگری سے شروع ہوگا اور 14 July سنڈے کے دن سرے وینکوور پر ختم ہوگا. اس ٹور کی مکمل معلومات کے لیے کال 647-388-4595. کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجک ایجنسی کے راجہ مدثر کو 647-290-3773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر 647-290-3773. آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی.
اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 Kennedy Road, برمپٹن, 9058-874-7171.
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com, لوکل نمبر
647-872-4900.
چاندنی بینکویٹ ہال,
انٹیلیجنٹ چوائس, لوکیشنز, sound system, innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience, corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye, 437-218-8734, chandnihalls.ca.
یا यूं ही चला चल रही यूं ही चला चल रही प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
Personalized travel solutions, affordable, easy and discounted airfares.
Airwing Travel and Tours, 905-272-2300, 905-272-2300, airwings.ca.
स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या कख दा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। माँ की बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, सीख कबाब, चिकन टिक्का, शवरमा, पिज्जा और मजेदार लाहौरी छोले, पालक पनीर और बहुत सी वेजिटेरियन ऑप्शंस। ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, वही देसी अंदाज और वही देसी जायका। 1310 दंदा स्ट्रीट ईस्ट, मिसिसागा, यूनिट 3। ऑर्डर नाउ, कॉल 416-526-6800।
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 905-232-5678 मिसिसागा, 416-757-9999 स्कारब्रो।
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट, या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में दो लोकेशन, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 905-291-4455, 905-291-4455।
वेलकम बैक, और तमाम सामीन जो हमें 770 AM डायल पर सुन रहे हैं और ई आवाज टीवी पर देख रहे हैं प्रोग्राम साउज़ आवाज का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जनाब, न्यूज का सेगमेंट शुरू करने लगे हैं। स्टूडियो में मलिक साहब आ गए हैं, शाजिया मलिक साहब, लियाकत मलिक कल, आज शाजिया मलिक, बहुत सारे मलिक हैं हमारे पास। अभी आपने देखा अतीक मलिक साहब का एड, उसके बाद शाजिया मलिक, फिर कल लियाकत मलिक, मतलब वी प्राउड विद द मलिक्स एंड वी रिस्पेक्ट मलिक एज वेल। तो जनाब बिल्कुल खबरों का टाइम सिटी बच चुकी है, खबरें तैयार हो गई हैं, आज कितने धमाके होंगे, कितनी फायरिंग होगी, किसने किसका घर लूट लिया, किसने जो है वो किसी के बारे में कुछ ट्वीट कर दिया, ट्वीट नहीं बल्कि अब तो क्या वो एक्स वो कर दिया, किसी हीरोइन ने किसी पॉलिटिशियन के बारे में कुछ कह दिया, ऐसी कुछ खबरें होंगी। लेकिन मैंने कल क्या कहा था, रिकॉर्ड में है ना, इंग्लैंड जीते के फाइनल खेलेगा स्पेन से, कहा था। Yes, you're right. Absolutely. Thank you very much. You agree with me. और उन्होंने नहीं माना था बात, उनकी नेदरलैंड की टीम थी, वो हार गई आज। चलें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उनके ऊपर
غم پر نمک چھڑکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ جی کیسے ہیں؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے اوپر دوسرا نمک میں چھڑ دوں، کل تم نے کہا کینیڈا کی ٹیم جیتے گی کوپا امریکا میں، پھر کیا ہوا؟ ارجنٹینا جیتی جو میں نے کہا تھا. اچھا وہ تمہیں یاد نہیں ہے ہیں؟ تو یہ ڈرامہ تمہیں یاد ہے دوسرا.
بھائی دیکھیں اب آپ ایک بات سنیں میری.
نہیں میں کیا سنوں تمہاری بات، نہیں پہلے جواب دو اس بات کا.
وہ جواب دینے لگا ہوں نا، میں سیکھ چکا ہوں. اب آپ چاہے کہ ڈائریکٹ جواب نہ دو.
اچھا
یہ میں نے جرنلسٹ سے سیکھا ہے.
اچھا
بہت پایا کہ جرنلسٹ تھے پاکستان میں، انہوں نے کام کیا.
اچھا
اس کے بعد کچھ ٹائم کے لیے یو اے ای رہے وہ.
اچھا
اس کے بعد آ گئے کینیڈا. میں مطلب آئی لرن ا لاٹ.
اچھا
آپ کبھی بھی ڈائریکٹ جواب نہ دو.
اچھا
اس کو تھوڑا چورنگی گھماؤ، نازم آباد چورنگی دیکھی، اس کو گھماؤ تھوڑا.
دیکھی نہیں مگر سنا بہت ہے.
تو اب آپ کو میں جواب دیتا ہوں. آپ کا بچہ ہو، بچہ ہے ماشاء اللہ، وہ بالکل ہی وہ ہو، آپ کی بات بات نہ سنتا ہوں، مطلب آپ کو پتا ہو
کہ تمہاری طرح کا ہو،
مطلب آپ سمجھ لیں کہ یار اس کے مارکس جو ہے تمہاری طرح کا ہو، میتھس میں جو ہے وہ 100 میں سے 70 آئیں گے، لیکن آپ یو آر جسٹ بیکنگ اپ، وہ مین 90 آئیں گے 90 آئیں گے، لیکن آپ اس کو بیک اپ تو کرتی ہیں نا، مطلب آپ اس کو انکریج کرتی ہیں، آپ گو گو
ڈیفینیٹلی
ہے زیاد گو شاباش گو.
یس
لیکن اگر وہ 70 لے کے آ گیا ابھی کیا کرے، لیکن آپ
ابھی کیا کریں
وہ کرتی ہیں نا، میں بھی وہی کرتا ہوں.
بالکل صحیح ہے.
آئی لو مائی کنٹری.
لیکن کینیڈا بہت اچھا کھیلا تمہیں پتا ہے، ایک ایک بندے نے تعریف کی
بھائی.
انہوں نے کہا کہ اتنی گٹسی ٹیم تھی، اتنی گٹسی ٹیم تھی،
اور فرسٹ ٹائم ہم نے جو ہے وہ کوالیفائی کر کے سیمی فائنل. یہ وہی ایگزامپل ہے جو کرکٹ میں افغانستان نے
کیا ہے،
وہ ہم نے کیا.
بالکل نہیں نہیں بہت تعریف کی. اب تمہیں پتا ہے کہ حالانکہ ٹیم ہاری ہے پھر بھی سب کسی کو افسوس نہیں ہے.
نہیں نہیں دیکھیں لڑکے ہار گئے نا، یہ یہاں تک پہنچنا ہی ایک اچیومنٹ تھی.
کوچ اتنا خوش ہے، لوگ اتنے خوش ہیں،
اور میری تو ویسے ٹیم سوکر میں جو ہے آپ کو پتا ہے اسپین. آپ کی تو ٹیم ہار گئی آج نیدرلینڈ، بڑا افسوس ہوا مجھے، اور آئی ریئلی سیڈ فیل سیڈ مائی سیلف جب مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو مجھ سے اگری نہیں کرتے وہ ہارتے ہیں.
تو آپ جو میرے سے 50,000 دفعہ ہارے ہیں اور ایک آپ کی پریڈکشن ٹھیک آئی ہے، وہ 1=50,000.
اچھا اب اس پر بھی سن لیں، مطلب آپ کے مجھے لگ رہا ہے آپ کے وہ جو ہے نا
ستارے گردش میں
شنی شنی آیا ہوا آپ کے اوپر، وہی آیا ہوا.
شنی لانے پہ اگر ہم آگے نا پہ پھر آپ ادھر بیٹھے نہیں رہ جائیں گے.
آپ کی جو جتنی بھی وہ جیک پاٹ ہے نا، وہ $1 سے لے کے $10 تک. یہ ملین ڈالر ہے.
اچھا جی. اچھا جو تم کہو گے وہ ملین ڈالر ہے، جو میں کہوں گی وہ ڈالر شاپ ہے.
ویلیو کی بات ہوتی ہے.
اچھا ویلیو.
چھوٹی چھوٹی چندی آپ نے جو ہے وہ لفافے نکال کے خوش ہو گئی. وہ ہوتا تھا نا کھیلا اپنے، وہ ایک وہ میلے میں جاتے تھے کھیلنے کے، وہ رنگ پھینکتے تھے، وہ دیتا تھا سوئی جا کے، وہ دو ٹافیاں دیتے تھے فائنٹا کی. آپ کی وہ تھی.
اچھا اچھا تمہارا کیا نکلا؟ تلوار نکلی ہے، بڑی کوئی بڑی گن نکلی ہے؟ AK-47 نکلا،
ہونڈا سیوک نکلی ہے.
اچھا
میلے میں ہماری ہونڈا سیوک نکلی ہے.
وہ عجیب کیا بات ہے.
اچھا آپ کا جو ایک وہ ہے نا، ایک کہ مجھ پر وہ گچی دبا دوں گی، مطلب تشدد ہر بار میں، اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے آپ نے. اب میں نہیں ڈرنے والا. نو 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 آئی ہیو اے بگ مسلز ناؤ.
اچھا اچھا
پروٹین کھا رہا ہوں میں آج کل.
کیا بات ہے جی. تھوڑے دنوں میں تم جو ہے
کوئی کاربز نہیں.
اچھا
نو 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 اونلی پروٹینز. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے آپ کو کیلا کبھی بھی کھانا ہو وہ پکا ہوا کیلا نہ کھائیں.
اچھا
کچا کیلا کھائیں، کچے نہیں ہرے رنگا. پتا کیوں؟
لیس شوگر. تو تم وہ کھا رہے ہو آج کل؟
یس.
وہ تبھی تمہارے مسکل بہت نکل آئے میں دیکھ رہی ہوں. او کمیزیں تو تمہیں تنگ ہو گئی ہیں اب بازوؤں سے.
جی بس
اب دیکھنا کیا ڈولے نکلیں گے جان سینا کی طرح کے. او
جان سینا. پھر وہ پھر وہی بات، سلطان کو صرف سلطان ہرا سکتا ہے، دیر از نو جان سینا.
اچھا اچھا سڑا سینا زیادہ چوڑا ہے.
مطلب جان کون ہے یہ جان سینا؟ میں تو نہیں جانتا.
نہیں جانتے؟ چلو ٹھیک ہے، گڈ فار یو. سینے آج کل لوگوں کے بڑے چوڑے ہو گئے ہیں نا.
میں نے کہا نا سلطان کو صرف سلطان ہرا سکتا.
اچھا اچھا چلو
دیر از نو مقابلہ.
چلو ٹھیک ہے. اچھا کسی تو میرے کم نہیں کرنے دینا نا، لیکن ہم نے ادھر کام کرنے کے لیے میں آئی ہوں. ہاں تم تو سارے دن سے سو رہے ہو نا، اور اب تم باتیں بنا رہے ہو، اور تم چاہ رہے ہو میں بھی نہ کام کروں، سو جاؤں تمہارے طرح.
نہیں کام کر،
تو اب میں ذرا تھوڑا سا کام کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا تمہاری یہ فضولیات جو ہے نا، یہ فالتو گیریاں ہم بعد میں سنیں گے.
کم از کم اس دہشت گردی سے بہتر ہے جو آپ میرے ساتھ کرتی ہیں.
بڑا ہے تمہاری ساری فالتو گیریاں. ٹھیک ہے. اچھا جناب دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ برٹ ٹو یو بائی آنٹاریوز لارجسٹ پاکستانی حلال بفے ویلج ٹیسٹ. विलेज टेस्ट पे आप जाएं, दो रेस्टोरेंट्स हैं, फैसल चड्ढा साहब होते हैं जनाब इस पे, और आपको अगर तो जाना है इधर मिसेस सागा के रेस्टोरेंट में तो उसका एड्रेस है 4141 डिक्सी रोड मिसेस सागा 9052323663 अगर आपको ऑर्डर डालना है, और अगर आपको ओकविल जाना है तो दे आर एक्सक्यूज मी लोकेटेड एट 2294 लेक शोर रोड वेस्ट ओकविल, और उसका नंबर है 9052262294। इसके अलावा जनाब डॉक्टर फियाज कुरैशी, अगर आपके दांतों में कीड़ा लग चुका है या पीले दांत हैं या खराब हैं तो आप डॉक्टर फियाज कुरैशी के पास जाएं, उनके जो है तीन जो है क्लिनिक्स हैं, और जो दो उनके डेंटल क्लिनिक्स हैं वो मिसेस सागा में, उसका नंबर है 9052325678, और जो स्कॉर्ब्रो में है उसमें है 4167579999, तो उस फोन पे आप कॉल कर सकते हैं उनको। एंड जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल 1400 बंदे प्लस टाई बंदा तुसी बुला सकते हो, और बड़ी जबरदस्त एम्बियंस है, बड़ा खूबसूरत हॉल है इनके, 32 रूम लग्जरी होटल है, और इट इज लोकेटेड एट 2935 ड्रू रोड मिसेस सागा, तो इनका जो नंबर है वो है 6479653823। ठीक है जी, तो ये है। अच्छा जनाब हम आपको बता दें कि जो हमारे टूडो साहब हैं वो आपको हम बता ही रहे हैं कि गए हुए हैं डीसी गए हुए हैं, बेतहाशा हमारे बेचारे जंती टूडो को क्रिटिसाइज वहां पे किया जा रहा है। अब देखो ना, ये तो प्यार नहीं है ना, अपने मुल्क में बुला के इतनी बातें मासूम को सुना रहे हो। बहरहाल जी, टूडो साहब जो हैं वो डीसी में हैं, उनको बेतहाशा उनके ऊपर एतराज किया जा रहा है, और नेटो ने सब ने उनको पूछ रहे हैं दबे दबे लफ्जों में कि भाई 2% ऑफ जीडीपी आप डिफेंस पे कब यूज करेंगे। यूएस स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है माइक जॉनसन, उन्होंने एक्यूज किया कनाडा को कि वो कहते हैं जी कि ये जो है ये यूएसए के सर पे चढ़ के ना बड़ा जो है वो आगे आगे जा रहा है, और ये 75th एनिवर्सरी समिट ऑफ नेटो हो रही है, आपको पता ही है, तो उसके ऊपर जी ये बातें सारी हो रही हैं। वो कह रहे हैं जी कि हमको हमारे बॉर्डर के ऊपर ये कनाडा है और हमारे बड़ी परेशानी है कि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने तो आज बड़े ही सख्त जो है जॉनसन साहब ने वर्ड्स यूज किया, उन्होंने कहा कि इट इज एब्सोल्यूटली शेमफुल। इसके अलावा कुछ और भी जो मेंबर्स हैं उनके बारे में भी जो है उन्होंने भी ऐसी सिमिलर बातें की हैं। ये जो 32 मेंबर नेटो अलायंस है इसमें से 23% जो है उन्होंने या तो मीट कर लिया या एक्सीड कर लिया 2% प्लेज। कनाडा जो है वो इस वक्त स्पेंड कर रहा है 1.37% और बॉटम से पांचवें नंबर पे है। इट इज अहेड ऑफ बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्लोवेनिया, स्पेन। नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टॉल्टनबर्ग, उन्होंने बड़ा आज वार्न किया है, उन्होंने कहा कि ये इस तरह की जो कंप्लेसेंसी है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 2% इज नॉट सीलिंग, इट इज द फ्लोर, यानी कि इससे ज्यादा आपको स्पेंड अब डिफेंस के ऊपर करना चाहिए। और वैसे तो उन्होंने कनाडा को उसका नाम नहीं लिया, सिंगल आउट नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि प्रेशर जो है वो इसकी वजह से ट्रूडो साहब पे आया है और लोगों ने भी किया है। इसके साथ साथ कुछ लॉ मेकर्स जो हैं यूएस के वो भी ट्रूडो साहब से मिले हैं। रिपब्लिकन सेनेट माइनॉरिटी लीडर मिच मैकोनल जो हैं उन्होंने एक्स के ऊपर लिखा है कि हमारे जो नॉर्दर्न एलाई यानी कि जो कनाडा है उसको बड़ा सीरियसली इसके बारे में सोचना पड़ेगा और नेटो के अंदर इनको स्पेंड करना पड़ेगा। ट्रूडो साहब जो हैं उनकी जो एक कीनोट स्पीच हुई थी नेटो क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सलेंस के ऊपर, तो वहां पे अपने कीनोट स्पीच में उन्होंने अपना जो ये जो स्पेंडिंग इस वक्त कर रहे हैं 1.37% की ऑन डिफेंस, तो उसको उन्होंने किया है डिफेंड किया है नेशनल डिफेंस जो है कनाडा की। उसने कहा है कि बाय 2030 कनाडा विल स्पेंड 1.76% ऑफ जीडीपी ऑन मिलिट्री, लेकिन 2% कब स्पेंड करना शुरू करेंगे उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की है। लेकिन ट्रूडो साहब ने कहा है जी कि आप ये देखें कि हम बहुत ज्यादा कलेक्टिवली हम बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर, अगर या यूक्रेन का मसला हो या कोई भी मसला हो तो हम स्पेंड करते हैं। 99% ऑफ यूक्रेन मिलिट्री बजट जो है उसको नेटो फंड करती है। सिंस 2022 जब से रशियन इन्वेजन हुआ है यहां पे, उस वक्त से कनाडा ने $4 बिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं मिलिट्री सपोर्ट टू यूक्रेन। इसके अलावा ओवर $12 बिलियन जो हैं उन्होंने गारंटीज दी हैं कि इसकी हम लोन्स दे सकते हैं उनको उनकी इकोनॉमी के लिए यूक्रेन की, और काफी वोकल सपोर्टर हैं ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की उनके लिए, तो वो कहते हैं जी कि हम बहुत ज्यादा अदरवाइज कलेक्टिवली हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है ज्यादा यानी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। मगेल यूनिवर्सिटी जो है जी उसने अपना जो एक कैंपस है उसको शट डाउन कर दिया है کیونکہ وہاں پہ انکیمپمنٹس جو ہیں بڑے عرصے سے چل رہے تھے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ پرو پیلسٹینین انکیمپمنٹ جو ہے مگل کے اندر, اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. یہ 10 ویک لانگ انکیمپمنٹ تھا, اس کو اب ڈسمینٹل کیا گیا ہے. مگل کے جو پریزیڈنٹ ہیں دیپ سینی, انہوں نے کہا جی کہ یہ پیسفل پروٹیسٹ بالکل نہیں تھا, اور انہوں نے کافی لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کیا, وائلنس کی, اور بہت سارے لوگ اس میں سے تو یونیورسٹی کو بلانگ بھی نہیں کرتے تھے. آج انہوں نے پولیس کو بلایا ہوا تھا, پولیس یہاں پہ بہت ہی ہیوی رائٹ گیئر کے اندر جو ہے وہ دیکھی گئی تھی, اور انہوں نے سٹریٹس بھی جو تھی وہ انکیمپمنٹ کے آس پاس وہ ساری بند کی ہوئی تھی. اس دوران جو ہے بہت سارے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آوازیں لگاتے رہے. مگل جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم کلاسز جو ہیں اب کیمپس پہ جو ہو رہی تھی ان سب کو آن لائن موو کر دیا ہے تاکہ فیکلٹی اور اسٹوڈنٹس کی سیکیورٹی کے لیے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ بالکل کیمپس سے دور رہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یونیورسٹی جو ہے اپنی انویسٹمنٹس اسرائیلی ملٹری کے ساتھ بالکل ختم کرے, اور جو اسرائیلی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے ٹائز جو ہیں وہ کٹ کرے. تو یہ جو ہے اب اس کے اوپر یہ سارے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور جناب جیسے کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا, جو انوائرمنٹ کینیڈا نے بتایا تھا, جی ٹی اے کے اندر بے تحاشا صبح کے وقت جو ہیں وہ رینز دیکھی گئیں, بیکاز جو کچھ بچ گیا ہے ریمننٹس جو ہیں اس کے ہریکین بیرل کے وہ سدرن آنٹیریو کے اندر انٹر ہوئے تھے. اور یہاں پہ پہلے ہی انوائرمنٹ کینیڈا نے کہا تھا کہ کچھ ایریاز میں 40-60 ملی میٹرز رین ہوئے گی, اس کے علاوہ 20-40 ملی میٹر پر آور بھی ہو سکتی ہے. جی ٹی اے کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ اس وقت کچھ علاقوں کے اندر 2 ویکس آف رین ایک ہی دن میں ہو گئی ہے, اور کچھ علاقوں میں 1 منتھ ورتھ آف رینز جو ہیں ہو چکی ہیں, یعنی اتنی بے تاشا بارشیں ہوئی ہیں. اور انہوں نے کہا جی کہ اس کی وجہ سے شور لائن ریورز اور سٹریمز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کے اندر جو ہے اوور فلو وہ ہو سکتی ہیں. لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ بھئی آپ ان سے دور رہیں, اور خاص طور پہ اپنے بچے اور پیٹس جو ہیں ان کو دور رکھیں. لیکن ہائر ٹیمپریچرز جو ہیں وہ ویکینڈ پہ اب واپس آ جائیں گے پھر سے. آج تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے آیا لیکن پھر سے گرمی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جناب جو وائلڈ فائرز ہیں وہ گولڈن ریور کے جو ایریا ہے البرٹا میں وہاں پہ آ گئی ہیں, اور وہاں پہ ایویکیویشن الرٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے. ریور گارڈن ریور جو ہے وہاں پہ تو امیڈیٹلی کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن چونکہ اس وائلڈ فائر کی وجہ سے ہائی وے سے لوگ کٹ سکتے ہیں, تو اس لیے یہ وارننگ دی گئی ہے ریزیڈنٹس کو کہ اپنا فوڈ واٹر اور میڈیسنز پیک کرو اور کچھ دنوں کے لیے یہاں سے نکل جاؤ, اور ہورائزن کیمپ جو قائم کیا گیا ہے اس میں چلے جائیں ایٹ جون ڈیور پریری کے اوپر. وہاں پہ یہاں پہ زیادہ تر کری کمیونٹی رہتی ہے, وچ از لوکیٹڈ 200 کلومیٹر ایسٹ آف ہائی لیول ان ناردرن البرٹا. اس وقت جو ہیں آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, فائر فائٹرز ہیں, ہیلی کاپٹرز کے تھرو بھی کیا جا رہا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ آگ جو ہے لائٹننگ کی وجہ سے لگی ہے, اور بہت سارے ایڈیشنل ریسورسز جو ہیں وہ ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں تاکہ اس آگ کو فوراً بند کیا جائے. بائیڈن صاحب جو ہیں وہ آج نیٹو کے لیڈرز کو ڈنر دے رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں وہ ڈنر شروع ہوئے گا. اور آپ کو پتا ہی ہے کہ بائیڈن صاحب کی ہیلتھ جو ہے وہ بڑی انڈر سکینر ہے, اور اس کے ڈنر کے اندر جو ہے ٹوڈو صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئیں گی پریزیڈنٹ بائیڈن سے. پتہ نہیں ہے وہ ٹوڈو صاحب سے کیا کہیں گے, ان کو یہ 2% بڑھانے کے لیے بولیں گے اپنا جی ڈی پی کا ملٹری کے لیے کہ نہیں. البتہ اس وقت لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں. لیکن اب حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو سپیچز چل رہی تھی, جو ڈیبیٹس چل رہی تھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اس میں بالکل بہت دکھایا جا رہا تھا کہ کچھ ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کافی فگیٹ فل یہ لگ رہے تھے. لیکن جو ان کا آفس ہے اس نے ڈیفینڈ کیا, انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ صبح کے وقت بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, دن کو رات کو 8 بجے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی ایونٹس جو ہیں وہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہیں, لیکن ڈنر تو جناب اب 8 بجے کے بعد ہی ہے. تو اس میں جو ہے اچھا, اب جب یہ صبح کے وقت ٹوڈو صاحب جب لوگوں سے مل رہے تھے اور رپورٹرز بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے پوچھا ان سے بائیڈن صاحب کے بارے میں, ٹوڈو صاحب سے, کہ بھئی ان کی ہیلتھ کے لیے بڑے کنسرنز ہیں, آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے. ٹوڈو صاحب نے بالکل ڈاج کیا یہ کوسچن, اور انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا, آپ ان کا جو آفس ہے یعنی کہ وائٹ ہاؤس جو ہے اس سے آپ پوچھیں. ہوں دیکھو جی جس طرح دا عامر ہے نا مینوں اکھاں دکھاندا ہے, ہن روینڈا دی گورنمنٹ بھی اکھاں دکھا رہی ہے یو کے کو, ہیں عامر صاحب؟ جب رشی سونک صاحب کی گورنمنٹ تھی تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک امیگریشن پالیسی لے کر آئے تھے, اور وہ یہ امیگریشن پالیسی یہ تھی کہ جو بھی انلیگلی انگلینڈ میں آئے گا اس کو ایک تھرڈ سیف پلیس میں بھیجیں گا, جس کا انہوں نے کہا تھا کہ روینڈا وہ ہوئے گا روینڈا. और रुवांडा को इस सिलसिले में इंग्लैंड ने 307 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए थे कि भाई ये जितने तुम्हारे पास रेफ्यूजीज और इलीगल्स आ रहे हैं इन सबको तुमने सेटल करना है। अब आगे है जी यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर, उन्होंने आते सारी जो पहली स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल अग्रीमेंट था दोनों कंट्रीज के बीच में, मैं इसको स्क्रैप करूंगा और मैं जो इसको आगे नहीं चलाऊंगा। उसके ऊपर आज रवांडा की गवर्नमेंट ने कही है कि भाईजान जो हमने आपके साथ डील की थी दैट वॉज डन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ, और वो जो डील है उसके अंदर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर आपने ये डील को खत्म किया, क्योंकि हमने तो इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, तो जो जो कोई इंग्लैंड से इलीगल जा रहे हैं उनको अब हम सेटलमेंट कर रहे हैं और उनके ऊपर ये पैसा लगा रहे हैं, तो अगर आप इस डील से पीछे हट रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। अलबत्त ये जो पैसे हैं 307 मिलियन यूएस डॉलर्स ये हम आपको वापस नहीं कर रहे हैं।
ये तो गए
गए
सही किया
है जी भाईजन। तो क्योंकि उनकी बात ठीक है, वो कहते हैं जी
हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया।
नहीं 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 नहीं, वो कहते हैं कि ये आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे हेड ऑफ द स्टेट के बीच में था, एक इंटरनेशनल वो था, और वो जो एग्रीमेंट इंटरनेशनल लिखा हुआ है उसमें ये क्लॉज ही नहीं है कि अगर किसी ने स्क्रेप किया तो पैसे वापस मोड़े पड़ेंगे जी। तो इनकी लाइफ में भी, अब इंग्लैंड की लाइफ में भी नाजुक मोड़ आ गया, जो पाकिस्तान की लाइफ में ना जिसके ऊपर हार्वर्ड की स्टडी है, ये नाजुक मोड़ तो वो नाजुक मोड़ अब इंग्लैंड के ऊपर
पैसे वापस नहीं मिलेंगे
ना, वो नहीं मिलेंगे क्या, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं दे रहे,
बट ठीक हो गया,
उन्होंने कहा जी हम नहीं दे रहे आपको ये पैसे, ठीक है जी ऐसे है। अच्छा जनाब, आज बड़ी ये खतरे में नाक खबर है ब्लूमबर्ग की तरफ से, और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूके के जो अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टार्मर, उन्होंने आज यूक्रेन को कहा है कि ये जो हम आपको स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दे रहे हैं वो आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट रशियन मिलिट्री टारगेट्स इनसाइड रशिया। अच्छा, इससे पहले जब इंग्लैंड ने ये इनको स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स दिए थे तो उन्होंने कहा था कि ये हम आपको डिफेंसिव पर्पस के लिए दे रहे हैं, अगर आपके ऊपर अटैक होएगा तो आप काउंटर अटैक कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं स्टॉर्मर साहब कि नहीं, हम आपको इजाजत दे रहे हैं कि आप हमारा ये जो इक्विपमेंट है या हमारे मिसाइल्स जो हैं आप रशिया के अंदर यूज कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं ताकि रशिया का जो अटैक है उसको पीछे किया जा सके। और उनकी जो है ये डिस्कशंस नेटो के समिट के ऊपर ही चल रही थी, उन्होंने ये बातें जो हैं इस तरह की बहुत सारी सिमिलर जब डीसी जा रहे थे उस वक्त रिपोर्टर्स को भी ये बताई, लेकिन उन्होंने कहा जी कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसको यूक्रेन को जरूर फॉलो करना चाहिए, और लेकिन यूक्रेन के ऊपर है, हम तो उनको कह रहे हैं आप यूज करें, अगर वो यूज करना चाहते हैं तो वो करें। अगर आपको हम बता दें कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स जो हैं ये प्रिसिजन गाइडेड क्रूज मिसाइल्स हैं और इनकी फायरिंग रेंज जो है ओवर 250 किलोमीटर है, यानी कि इसका क्या मतलब होता है प्रिसिजन गाइडेड क्रूज के, ये आपने जो उसको टारगेट उसमें फीड कर दिया ना उसके दिमाग में, उसको चाहे टारगेट से जितना मर्जी हटाने की कोशिश करेंगे या उसको हवा में उड़ाने की कोशिश करेंगे, वो अपना रूट चेंज कर 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 करके फाइनली जाके उस टारगेट पे जाके जरूर पड़ेगा, तो तबाह करेगा ही करेगा वो उसको। अनलेस एंड अनटिल आपके पास भी इस तरह का कोई प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है तो आपने भी अगर लॉक कर लिया है कि आपने अब इस मिसाइल को हवा में तबाह करना है, तो फिर अगर आपने कर दिया, वरना आप उसको मारने की कोशिश अगर ट्रेडिशनल वेपन से करेंगे तो वो तबाह नहीं होएगा, वो घूमता जाएगा, वो अपने आप को बचाता जाएगा और जाके टारगेट पे मारेगा अपने आप को। तो जनाब ये जो है कोई इतनी अच्छी खबर नहीं है, जाहिर है कि इसके ऊपर अब कल रशिया का रिएक्शन आएगा, जब आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। यूएई जो है जी, अब आप इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको कहते हैं, अब आप इसको अच्छा समझना चाहते हैं अच्छा समझ लें, आप इसको टॉलरेंस कहना चाहते हैं आप टॉलरेंस कह रहे हैं, आप इसको बुरा मनाना चाहते हैं उनकी इस खबर से आप बुरा मना लें। यूएई के अंदर एक जो बच्चा था उसने एक तो पैलेस्टीनियन स्टाइल कफिया जो स्कार्फ था वो पहना हुआ था और वो पढ़ रहा था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का जो अबू धाबी कैंपस है उसके अंदर, वो जब स्टेज पे अपना डिप्लोमा लेने के लिए आया तो उसने जोर से कहा कि फ्री पैलेस्टाइन फ्री फ्री पैलेस्टाइन, जब उसने ये नारा लगाया तो डिग्री तो लेके वो नीचे आ गया, क्योंकि ये जो इनके हो रहे थे ग्रेजुएशन सेरेमोनीज वो मई में हो रही थी, लेकिन आज यूएई की गवर्नमेंट ने उसको ऑर्डर दिया है कि इमीडिएटली उसको यूएई से डिपोर्ट किया जा रहा है। यूएई जो है वो आपको पता ही है कि बड़ी उसकी टाइट कंट्रोल है स्पीच के ऊपर और कोई भी पॉलिटिकल रैलीज भी नहीं वो करने देता है और इन सब चीजों को इलीगल मानता है, और कोई भी ये जो मैस प्रोटेस्ट होते हैं जैसे कि आप इन कंट्रीज में देखते हैं वो भी नहीं करने देता है। UAE की जो गवर्नमेंट है उसने कहा है जी कि इस तरह की हम कोई भी फितने वाली चीज की इजाजत नहीं दे सकते हैं, किसी को हमने इजाजत नहीं दी है कि वो किसी किस्म का भी कोई मोर्चा निकाले, एंटी ना पैलेस्टाइन निकाल सकते हैं ना प्रो पैलेस्टाइन निकाल सकते हैं, ना एंटी इसराइल निकाल सकते हैं ना प्रो इसराइल निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसको। इसके साथ साथ यूएई की जो आज कोर्ट है उसने जी लाइफ सेंटेंस दी है 40 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को और उनको कहा जी कि दे वर फाउंड गिल्टी ऑफ टेरर ऑफेंसेस। अबू धाबी फेडरल कोर्ट ऑफ अपील जो है उन्होंने इनको कहा कि तुम लोग जो है क्रिएट कर रहे थे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट और इसके ऊपर जो सारी दुनिया के राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इसको जो ट्रायल जिसका के नाम था यूएई 84, ये 84 लोगों के ऊपर ट्रायल चलाई जा रही थी और लास्ट जनवरी में यूएई के प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे उन्होंने रेफर किया था इनको कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि ये क्लैंडेस्टाइन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जिसका के मकसद यूएई के अंदर वायलेंस और टेरर फैलाना है, जिसके कि आज जब पूरी हो गई है सारी आर्ग्यूमेंट्स तो इनको आप जो 43 के करीब जो लोग हैं इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है। तो ये जनाब दो बड़ी खबरें थी आज यूएई की। मोसाद के जो डायरेक्टर हैं डेविड बर्निया वो फ्राइडे को अब दोहा में पहुंच रहे हैं ताकि सीज फायर और हॉस्टेज की जो डील्स हैं उनके ऊपर बात की जा सके और ये डील जो है ये हमास और इसराइल के बीच में होनी है। शिन बेट के जो डायरेक्टर हैं रोनन बार और निटजैन एलोन इसराइली कोऑर्डिनेटर ऑन मिसिंग एंड हॉस्टेजेस जो हैं उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बर्निया को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बर्निया के साथ बहुत क्लोजली काम करूंगा। बर्निया की मुलाकातें कतारी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अल थानी के साथ होंगी। ये अनक्लियर है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसके अंदर यूएस और इजिप्शियन ऑफिशियल्स जो हैं वो भी बैठे होंगे क्योंकि ये तीन जो हैं मीडिएटर्स हैं इस वक्त कतर यूएस एंड इजिप्ट। तो जो लास्ट टॉक्स हुई थी वो लास्ट मंथ हुई थी लेकिन कुछ अननेम्ड सिक्योरिटी सोर्सेज ने इजरायली एक आउटलेट को बताया है कि हमास का रिस्पांस जो है वो बड़ा अच्छा है और हमें लगता है कि कोई ब्रेक थ्रू आएगा लेकिन जो बहुत सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे कि नहीं वो उसमें जो है वो मुश्किल है। इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव किया था बर्निया का दोहा का विजिट लेकिन फार राइट नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन गवीर जो हैं उन्होंने बड़ा ऑब्जेक्ट किया है इस डील के ऊपर और उन्होंने कहा है जी कि ये जो आप कह रहे हैं कि इस डील की तरफ हम जाएंगे ये डील कहेगी कि इसराइल की जो मिलिट्री है उसको पूरी तरह से गाजा से विदड्रॉ किया जाए जो कि हमारे हक में नहीं है। उन्होंने एक्यूज किया प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू साहब को कि तुमने कोई मैटर्स जो है कैबिनेट के साथ डिस्कस नहीं की और तुमने खुद से ये फैसला कर लिया उसको भेजने का वहां पे और ये सारी डेवलपमेंट उस वक्त हो रही है जब गाजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और वैसे भी बाइडन साहब इलेक्शन ट्रेल पे हैं उनको वोट चाहिए लेकिन बाइडन साहब के ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर भी है। उन्होंने आज बात की थी बहुत लंबी फोन के ऊपर नतन्याहू साहब से बात की थी और उनको कहा था कि भई आप ये जो है ये सिक्योरिटी ऑफिशियल को जाने दें और फाइनलाइज करें अब बिल्कुल ये सीज फायर और हॉस्टेज डील जो है इमीडिएटली। तो अब इसके बीच में जो है ये उसने कह दिया है बेन गवीर ने कि जी ये बिल्कुल सही नहीं है। आज जो है बहुत ज्यादा क्योंकि बाइडन साहब के ऊपर भी अब जो है ना वो आ गया प्रेशर आ गया लोग अब उसको कह रहे हैं जैसे कि जो जॉर्ज क्लूनी है जो हॉलीवुड का स्टार उस तक ने कहा उन्होंने कहा कि ही शुड नॉट बी रनिंग उसकी सेहत ठीक नहीं है बाकी भी लोग बहुत सारे कह रहे हैं तो अब सेहत ठीक नहीं है हो सकता है उनको ज्यादा प्रेशर आ जाए उनको निकलना पड़ जाए प्रेसिडेंशियल रेस से लेकिन वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाना चाह रहे हैं कि चलो जी ठीक है लड़ाई तो हुई थी लेकिन मैं दोस्ती अब करवा के फिर गया था तो इसलिए वो बहुत ज्यादा हाँ मुश्किल है वैसे तो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल ही 99.9% तो मुश्किल है लेकिन 0.1% शायद कुछ अगर सामने आए चीज तो भारत जी उन्होंने कहा है कि ये बंद करो इसको तो भाईजान पहले आप कह देते बंद करो इतना असला क्यों दिया इतने पैसे क्यों दिए 10 महीने लोगों को क्यों मरवाया हमने तो आपको कल रिपोर्ट बताई थी कि वो जो सर्वे आया लैंसेट का वो कहते हैं ये 38,000 नहीं 186,000 पैलेस्टीनियंस मर गए इसमें तो भाईजान इतना बंदा आपने मरवा दिया है। अच्छा जी बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना साहिबा उनकी मुलाकातें हुई हैं चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ और इसके साथ साथ चाइनीज प्राइम मिनिस्टर जो है ली कियांग उनके साथ भी इनकी मुलाकातें हुई हैं एट ग्रेट हॉल ऑफ पीपल इन बीजिंग और दोनों कंट्रीज के बीच में 21 के करीब अग्रीमेंट्स और एमओयूज जो है वो साइन किए गए हैं। वो कहते हैं जी कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कॉम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो कोऑपरेशन है उसके ऊपर हम काम करेंगे और इसमें चाइना जो है चार तरीकों से बांग्लादेश को लोन देगा एक तो ग्रांट्स देगा इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा कंसेशनल लोन्स देगा और कमर्शियल लोन्स जो है वो देगा। फॉरेन मिनिस्टर जो है बांग्लादेश के डॉक्टर हसन महमूद उन्होंने आज मीडिया को इसकी सारी डिटेल्स दी हैं जो सारी ये मुलाकातें हुई हैं दोनों के बीच में और इससे पहले जब शेख हसीना जो थी पहुंची थी वहां पे चाइना में, तो उनको रेड कार्पेट रिसेप्शन दिया गया था एंड शी वॉज ग्रीटेड बाय प्रीमियर ली, और उसके बाद इनके बीच में जो है मीटिंग्स चली थी। इस मीटिंग के बीच में अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो टॉक हुई है वो रोहिंग्या के ऊपर हुई है, क्योंकि आपको पता ही है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बहुत बड़ी तादाद में ये जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज भागे थे बर्मा से, वो यहां पे आके रह रहे हैं। और इसके अलावा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, रीजनल और इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी बात हुई। अच्छा जी, सारी दुनिया क्या कहती है? सारी दुनिया कहती है हमारे पास और टूरिस्ट आए हैं। एक दुनिया का कंट्री है वो कह रहा है हम नहीं चाहते हमारे मुल्क में टूरिस्ट आए, नहीं चाहिए
उनको यहां भेज दे।
वो कहते हैं हमको नहीं टूरिस्ट चाहिए, हमसे संभाले नहीं जा रहे। कैन यू इमेजिन
छोटा मुल्क होगा।
अच्छा जी, ये जो है आज मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस में लोग ज्यादातर एथेंस में जो जाते हैं तो जाके देखते हैं ये पार्थियन और कलरफुल उनके मार्केट्स और प्लैट्स ऑफ सोवलाकीज और ये सारा कुछ देखते हैं, लेकिन यही एग्जैक्ट तीन चार जगह हैं जिसको कि ये चूज करते हैं सारी दुनिया के टूरिस्ट जो है और यहीं पे आना चाहते हैं, जिसकी की वजह से एथेंस के अंदर इस क्राउड को मैनेज करना जो है वो अनइमेजिनेबल हो गया हुआ है। बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं खासतौर पे जैसे एक्रोपोलिस के एरिया में आए थे, और अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स लास्ट ईयर 20,000 टूरिस्ट जो था उसने आके ये डिफरेंट जगहों के ऊपर विजिट किया था, और समर का उन्होंने इंतजार ही नहीं किया था। एज अ रिजल्ट इनकी जो टूरिज्म थी वो 120% बढ़ गई थी बिटवीन 2019 एंड 2023, और ये जो सारा पैसा है ये 25 से 30% ग्रीस का जीडीपी जो है वो टूरिज्म से आता है। और जो ये टूरिज्म है खासतौर पे ये कुछ और भी इलाकों में, ना सिर्फ एथेंस में बल्कि सेंटोरिनी जो है वहां पे 90% बढ़ गई है, और बेतहाशा यहां पे लोग आते हैं। लेकिन लोकल कम्युनिटीज ने कहा जी कि जिस वक्त ये विजिटर्स आ जाते हैं तो हम जो है अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर सकते हैं, सड़कें क्रैम्प हो जाती हैं, बेतहाशा रश हो जाता है, तो ये जो सिस्टम है ये सस्टेनेबल नहीं है। एथेंस के जो मेयर हैं डेरिस डूकस ने, उन्होंने भी इसी तरह का सेंटीमेंट किया, उन्होंने कहा जी कि ये कोई और तरीका इनको टूरिस्टों को जो है इधर बुलाने का करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी वैसे भी ईच विजिटर जो है सिटी के अंदर 0.40 यूरो खर्च कर रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है 0.40 यूरो, यानी कि 0.40 वो जो सेंट है 40 यूरो तो बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं ना, 40 सेंट्स जो है, हाँ 40 पैसे आप अल्फाज में कह सकते हैं, वो 40 पैसे का यूरो जो है वो यूज कर रहा है, तो उसके लिए हमको इतना जो है वो करने की क्या जरूरत है। लास्ट ईयर 33 मिलियन टूरिस्ट विजिटेड ग्रीस, और आपको पता है ग्रीस की पॉपुलेशन इससे बहुत कम है, ग्रीस की पॉपुलेशन 10 मिलियन है
बताओ,
और 33 मिलियन लोगों ने ग्रीस को विजिट किया है। हाँ जी, लेकिन वो कहते हैं जी कि ये हमारे लिए इतना ज्यादा टूरिज्म अच्छा नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं वो बहुत खराब होते हैं, हाउसिंग के बड़े मसले पड़ जाते हैं, तो पायान कोई होटल शोटल बना लो तुम, ना जी ना होटल नहीं हमने बनाने। अब इन्होंने क्या करना शुरू किया लोगों को डिस्करेज करने के लिए, कैन यू इमेजिन, वो कह रहे हैं जी कि हम एक क्लाइमेट क्राइसिस रिजिलियंस टैक्स लेकर आ रहे हैं, और जो जो टूरिस्ट जो है वो जो होटल्स में आके ठहरेगा और वहां पे स्पेंडिंग करेगा उसको ये टैक्स देना पड़ेगा,
उन्हें का महंगा कर दो
महंगा कर दो ताकि लोग ना आए। पहन क्या हो गया, दिमाग खराब है? और जी जो भी इधर सुन रहा है जो ग्रीस जाने के लिए मरा जा रहा है ना, प्लीज अब पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह है, वो आपके आगे पीछे उधर लोग फिरेंगे, बड़े हॉस्पिटेबल हैं, खाना बड़ा अच्छा है और इंतहाई खूबसूरत, आपको बिल्कुल स्विट्जरलैंड के नजारे आएंगे। आप पाकिस्तान के जो है ना वो नॉर्थ की तरफ जाओ प्लीज,
40 यूरो में घूम लेंगे।
हाँ इतना सस्ता है, शॉपिंग भी कर लोगे, रह भी लोगे, खा पी भी लोगे, बड़े मजे आएंगे आपको। चलो 40 जरा बहुत ही, हाँ सौ यूरो में आप बड़े मजे कर लेंगे, तो आप पैजान पाकिस्तान जाओ। कल हम आपको, एक टूरिस्ट है जिसने के पाकिस्तान के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, हम आपको पाकिस्तान के कुछ इलाके दिखाएंगे, आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा जैसे दुबई में हम आपको फिरा रहे हैं, नहीं, कल हम आपको वो बताएंगे इलाके पाकिस्तान के अंदर जनाब बेइंतहा डेवलपमेंट हो गई है। आपको शायद लग रहा है कि अभी भी वो शायद कैमल्स चराने वाला जो है वो पाकिस्तान है, नो बेइंतहा बड़ी खूबसूरत जगह बन गई है। हमने अभी थोड़े दिन पहले आमिर साहब कराची का वो एक हिस्सा दिखाया था, इतना खूबसूरत लोग समझ रहे थे वो दुबई है, अब हम आपको कल लाहौर के कुछ हिस्से और बाकी पंजाब और बाकी इलाके दिखाएंगे, आप देखना कि इतना खूबसूरत हो गया है। तो वहां पे आप जाओ और एंजॉय का मजा लो, ठीक है जी। अच्छा अच्छा जनाब, ये जो खबर है ना, ये तो आपके जिस्म के अंदर चिल्स भेज सकती है। ये जो खबर हम आपको सुना रहे हैं, ये आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। एएफपी के मुताबिक एक चीना हमारा दोस्त जो है 100 लाइव स्नेक्स, लाइव जिंदा स्नेक्स अपनी पेंट की जेब में स्मगल कर रहा था।
ओ माय गॉड,
कैन यू इमेजिन, ओ माय गॉड। आप जो हमारा टीवी देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने ये थैला, इसका जो है एक थैला ये जो है ये निकाला, तो उसमें से ये इतने रेप्टाइल्स निकले, यानी कि ऑल टुगेदर जो दो तीन इसने थैले थे उसके अंदर 100 लाइव स्नेक्स थे। अच्छा, ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे, इनको कुछ लगा कि ये कुछ कंफर्टेबल नहीं है और कुछ इसकी हिलजुल भी इसको नजर आई इनकी जेब में। ये हांगकांग जा रहा था शेंजन से, तो नहीं हांगकांग से, हाँ हांगकांग से निकल के शेंजन चाइना जा रहा था, और जो है वो ऑफिसर्स जो है कस्टम ऑफिसर्स, उन्होंने जब इसको पकड़ा, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने जब इसकी शर्ट ऊपर से उतारी तो उन्होंने देखा कि इसके जो ट्राउजर्स के पॉकेट्स हैं उसको इसने 6 कैनवस ड्रॉ स्ट्रिंग बैग्स जो हैं उनके साथ जोड़ा हुआ था, और 6 बैग्स जब उन्होंने निकाले तो हर किसी के अंदर ये लाइव जो है रेप्टाइल्स थे, और तकरीबन 100 के करीब थे इसके अंदर। हर तरह का रेप्टाइल था, 104 टू बी एग्जैक्ट, 104 स्नेक्स थे इसके अंदर। मिल्क स्नेक्स थे, कॉर्न स्नेक्स थे, और बहुत सारी नॉन नेटिव स्पीशीज के स्नेक्स जो थे वो थे। चाइना जो है इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनिमल ट्रैफिकिंग हब्स, और अथॉरिटीज जो है वो काफी इस इलिसिट ट्रेड को क्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो हैं ये लेके जाते हैं। और अब ये जब स्नेक बड़े हो जाते हैं तो कोई पता नहीं, कोई पाइथन बनता, कोई क्या क्या कुछ बनता, नहीं पाइथन तो नहीं लेकिन कुछ और बड़े बड़े स्नेक्स बन सकते थे, हाँ कुछ भी बन सकते थे।
ये बताऊं इशू क्या था?
हाँ क्या था
ये? ऐसे मसला नहीं था, मैं आपकी न्यूज पे इंटरफेयर कर रहा
हूँ। नहीं
देखिए, वो चिप्स डाल के समझ के ले गया ना,
हाँ
करने के लिए, हाँ भी रास्ते के लिए उसने समझा होगा, हाँ बच्चे जेब में डाल लेते हैं,
ओ यस,
तो उनके लिए वो ले गया होगा, वैसे ही खा पी लेते हैं,
वैसे ही खाते रहते हैं,
पकड़ लिया,
हाँ वैसे ही पकड़ लिया यार। चीने तो वो ठूए थे, बिच्छू थे, सांप थे, कुत्ते थे, बिलियां, तो सारा खाते हैं, तो मतलब ऐसे ही पकड़ा उस मासूम को,
बिना वजह उसको कस्टम में पकड़,
हाँ हो सकता है उसको भूख ज्यादा लगती
है,
हाँ मंचिंग थी, पागल
है, बिला वजह इतना खर्चा किया,
हाँ इतना खर्चा किया, कसमें कोई मतलब है, मजाक है इतने, कोई पाया। अच्छा जी, अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बाशा। राजा बाशा आपको पता ही है कि वो कहते हैं जी मैं राइट कवरेज आपको देता हूँ, ऑटो इंश्योरेंस और कार का इंश्योरेंस मैं देता हूँ। राजा बाशा जी को आप कॉल कर लें, ठीक है जी, ऑल स्टेट के साथ होते हैं, इनका नंबर है 6472903773। इसके अलावा जनाब साढ़े थे तोड़े थे सारिया दे सुल्तान भाई, सुल्तान भाई होते हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेज पे, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, 801 बोवेट ड्राइव वेस्ट पे होते हैं, और बड़े प्यारे शैम्पेन कलर के और दूसरे जो एमरल्ड कलर के जो हैं अप्लायंसेस देते हैं, तो आप इनको भी कॉल कर लें आप, ठीक है जी। इनका नंबर है 9054502828, ठीक है, 9054502828, कॉल कर लेंगे इनको। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन नेशनल असेंबली उमर अयूब खान साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो कल गवर्नमेंट ने दिया है कि जी अब इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो कोई भी फोन या मैसेजेस या कोई कुछ टैप कर सकती है, उसके ऊपर इन्होंने बड़ा जो है आज एतराज किया, और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है। उमर अयूब खान साहब ने आज कहा कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने कहा जी कि अब जो गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है ये बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं है। उमर अयूब खान साहब ने आज कहा कि इसके अंदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बीबी जरदारी और मरियम साहबा जो हैं वो भी जेल में जा सकते हैं और ये सारा वक्त जो है कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहेंगे। इनकी जो एक मीटिंग हुई है आज सुनी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, उसके अंदर इन्होंने ये अडेप्ट किया रेजोल्यूशन कि इसके ऊपर जो है आवाज उठाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज्यादा एतराज किया और लॉ मिनिस्टर को भी बताने की कोशिश की, लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर को भी, कि ये जो इनके ऊपर जो बिला वजह के अरेस्ट अटेम्प्ट्स किए गए हैं उमर के ऊपर इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस में ऑन फॉल्स चार्जेस और फिर उसके घर के ऊपर रेड किया, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो है अपनी स्ट्रगल जारी रखेगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए अगेंस्ट सच लॉज, अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान, और उन्होंने कहा जी कि हम इसके अलावा जो ये जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट आपने शाह महमूद कुरैशी को दिया है इसको भी हम कंडेम करते हैं। जब उसको लेके जा रहे थे डेला जेल से लाहौर, 20 घंटे के सफर में उसको पानी तक नहीं दिया गया। ये जो क्रिमिनल कंडक्ट है पुलिस का, इसके लिए सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। इसके ऊपर बात करते हुए लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारर साहब जो हैं, उन्होंने जो है गवर्नमेंट का ऑफकोर्स जो है पॉइंट ऑफ व्यू उसको डिफेंड किया, और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि थ्रेट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ये टेररिज्म के जो किस्से हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ फोन जो है ISI बिल्कुल टैप करेगी। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने भी सिमिलर बातें की थी कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर ये जो खास तौर पे अजबे इस्तेकाम लाया गया है, इसके ये सारा कुछ जो है नेशनल सिक्योरिटी के सिलसिले में ये सारे कदम यानी कि गवर्नमेंट उठा रही है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को और खासतौर पे जस्टिस फायज ईसा साहब को टू डिसमिस इंट्रा कोर्ट अपील्स इन नैब अमेंडमेंट केस, और उन्होंने कहा जी कि एक रिटर्न एक उन्होंने सबमिशन भेजी है ईसा साहब को, और उन्होंने कहा जी कि अगर आप समझते हैं ये ठीक है और अप्रोप्रिएट है तो प्लीज आप ये मुझे ग्रांट करें। लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने रिजर्व किया था वर्डिक्ट ऑन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्ली चैलेंजिंग सुप्रीम कोर्ट्स September 15 majority 2-1 judgment announced by bench led by former Chief Justice Umar Atab Bandial. 2022 में PDM की जो government थी उसने amendment लाया था NAB ordinance में और उसने challenge किया, जिसको के challenge किया था इमरान खान ने Supreme Court में। इमरान खान जो है उसने कहा कि जो है वो इसको जो है dismiss करने की जरूरत है, लेकिन उसकी बड़ी contentious history है चीफ जस्टिस ईसा के साथ। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो पावर में थी, तो 2019 में अलेजली उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था जिसमें कि काजी फायज ईसा से पूछा गया था कि उनकी वाइफ और बच्चों की जो प्रॉपर्टीज हैं लंदन में उसका जिक्र उन्होंने क्यों अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर नहीं किया। बंदयाल साहब जो है उन्होंने ये उनकी प्ली जो थी ये डिसमिस कर दी थी, और इमरान खान साहब ने भी बाद में माना था कि ये एक मिस्टेक थी। तो अब सारे ही पाकिस्तान में बदमाश बने बैठे हुए हैं जी, तो अब जाहिर है क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, कोई एक अच्छी खबर सुना दी है इसको पहले के कुछ और बुरी खबर भी तो उन्होंने सुनाई है। चलो पहले बुरी खबर सुना देते हैं। जो इस्लामाबाद का संडे बाजार है जो कि I-9 में लगता है, उसमें एक मैसिव आग जो है वहां पर लगी है, जिसके के अंदर 300 स्टॉल्स जो हैं उसमें आग लगी है, और उसके अंदर जितने का जितना सामान पड़ा हुआ था वो सारे का सारा जो है वो गट हो गया, यानी कि सारा जल के राख हो गया है। और जो वेंडर्स थे उन्होंने बड़ा ग्रीवेंस जो है वो उन्होंने उसका उसके बारे में दी है। जाहिर है कि वो जो मार्केट के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो कहते हैं जी कि ट्रक्स जो हैं अब आ रहे हैं वहां पे आग को बुझाने के लिए। इसके अलावा जो है फायर ब्रिगेड भी लाई गई है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर फायर ब्रिगेड कम है, इसलिए रावलपिंडी से जो है रेस्क्यू टीम्स और फायर ब्रिगेड्स मंगवाए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी जो है उसके भी ऑफिशियल्स को बुलाया गया है आग को बुझाने के लिए। इसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है जी कि थैंक गॉड कोई कैजुअल्टीज नहीं है, लेकिन जो गुड्स पड़े हुए थे अंदर वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज वो सारा खराब हो गया। आपको पता ही है कि जो संडे बाजार लगते हैं इसमें सारा सामान जो है वेंडर्स उठाकर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि कुछ जो दुकानें हैं उनको वो बंद करके भी चले जाते हैं, जैसे कि कपड़े की जैसे कोई दुकानें होती हैं या कि कोई और इस तरह की चीजें जिसमें कि खराब नहीं होना होता है तो वो बंद करके चले जाते हैं। सब्जियां तो जाहिर है ताजी ही आती हैं, लेकिन बाकी तो वो सारा जल के राख हो गया है। तो ये जनाब बड़े अफसोस की बात है। आज पाकिस्तान ने क्रिएट की है जनाब हिस्ट्री की है एंड फॉर बेटर, और मुझे लगता है कि इस तरह के कुछ और लोग और मिलिट्री में आएंगे तो जरा मिलिट्री का भी दिमाग जो है वो ठीक होएगा। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने आज मुबारक दी है जूलियन मुअज्जम जेम्स को। ये पाकिस्तान मिलिट्री के पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो है 2-स्टार मेजर जनरल के इनको रैंक पे प्रमोट किया गया है। जेम्स साहब जो हैं उनकी बहुत ही जबरदस्त प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज हैं। उसके ऊपर बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इनका हार्डवर्क और पैशन जो है टू शो गाइडेंस टू द यंगर जनरेशन ये बहुत ज्यादा एग्जेम्पलरी है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हैं इन पाकिस्तान प्रोग्रेस प्रोस्पेरिटी एंड डिफेंस, जिसको कि भुलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उन्होंने जो है बहुत सारे जो लोग थे आज पाकिस्तान ने उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री की एटलीस्ट इस चीज का जरूर जो है وہ تعریف کی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی تو میرٹ بیسڈ پروموشن جو ہیں آپ نے کی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ملٹری میں ابھی بھی کچھ لوگوں کو ایکول اپرچونٹیز مل سکتی ہیں. سینیٹر مشاہد حسین نے کہا جی کہ یہ پاکستان ملٹری کا بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے, اور انہوں نے کوئی بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس کا کاسٹ کیا ہے, کریڈ کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور جو ہے اس کو اتنے بڑے عہدے پہ ڈالا ہے. میں تو کہتی ہوں فل جنرل بناؤ اس بندے نو. جولین موزن جیمز صاحب کو مبارک ہو سر, آپ کو بہت خوشی کی, ہمارے لیے تو بہت خوشی کی خبر ہے کہ ایک کرسچن کمیونٹی کا بندہ جو ہے اتنی بڑی پوزیشن پہ ہے. اس کے علاوہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آج ایک باڈی بنانے کے لیے کہا ہے جس کو کہ انہوں نے کہا جی کہ ریگولیٹ وہ کرے گی پورٹس اینڈ شپنگ سیکٹر کو تاکہ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس کے جو ایشو ہیں وہ حل ہو سکیں اور یہ جو گرین چینل ہے اس کو ایفیشینٹ بنایا جا سکے. اس کے اوپر جو کسٹم آفیسرز ہیں 24 گھنٹے ڈفرنٹ شفٹوں کے اندر کام کریں گے تاکہ انڈر انوائسنگ جو ہے اس کو روکا جا سکے اور جو مس ڈیکلریشن ہے اس کو بھی روکا جا سکے. اس کی وجہ سے بہت سارے پیسے بچیں گے, امپروو ہوئے گی اکانومی اور آئے گی انویسٹمنٹ. یہ آج شہباز شریف صاحب نے کہا, تو یہ آج بہت بگ نیوز تھی پاکستان سے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, ہندوستان کے اندر جو ہیں معاملات ذرا گرم ہو گئے ہیں کیونکہ سیاست میں 10 سال کے بعد اب بہت ہی شکتیشالی قسم کی اپوزیشن آ گئی ہے جی. بہت مہینوں سے ہریانہ کے اندر یہ آ رہا تھا کہ کوئی 20 یا 22 جو ہے فائرنگ اور ایکسٹورشن کے کیسز جو آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پولیس نے کافی نفری بھی بڑھائی تھی, کافی سرچ آپریشنز بھی چل رہے تھے, لیکن یہ ایکسٹورشن اور فائرنگ کے کیسز رکنے کا ہریانہ کے اندر نام نہیں لے رہے ہیں. آج اپوزیشن نے اور ٹریڈرز نے جو انکمبنٹ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ اس کو کہا ہے کہ بھئی ہریانہ کے اندر لا اینڈ آرڈر جو ہے لانے کی ضرورت ہے. یونین منسٹر آف اسٹیٹ راؤ اندرجیت سنگھ جو کہ ہانسی ٹاؤن میں تھے, رام اوتار تیال جو اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں بھارتیہ ویپار منڈل کے, انہوں نے یہاں پہ جناب ان کے سامنے یہ جو ہے مدے سامنے لے کر آئے. انہوں نے کہا جی کہ پولیس جو تھی انڈر فارمر چیف منسٹر بھوپندر سنگھ ہڈا جو جنہوں نے کہ رول کیا اس اسٹیٹ کو 2005 سے 2009 میں, انہوں نے بہت سارے ٹف میجر لیے تھے اگینسٹ گینگسٹرز اور کافی ساروں کو انکاؤنٹرز میں مارا بھی گیا تھا, تو سیم اسٹریٹجی ابھی پھر سے لانے کی ضرورت ہے. تیال صاحب نے کہا جی کہ یہ جو جس طرح کے یہ اٹیکس اور ایکسٹورشنز چل رہی ہیں ہریانہ کے اندر, یہ بالکل شو کرتی ہے کہ ہریانہ کے اندر اس وقت جنگل راج ہے, کیونکہ جو چیف منسٹر نیاب سینی ہیں جن کے پاس ہوم افیئرز کا بھی چارج ہے وہ بالکل ان گینگسٹر کو جو ہیں روک نہیں رہے ہیں. پراوین اترے جو ہیں میڈیا سیکرٹری آف چیف منسٹر, البتہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, چیف منسٹر صاحب بڑے سیریس ہیں اور پولیس اپنا کام پوری طرح سے کر رہی ہے, ہر ناکے کے اوپر جو ہیں چیکنگز چل رہی ہیں, ان کریمنلز کو پکڑا جا رہا ہے, ان کو بک کیا جا رہا ہے اور ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں. البتہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ نہیں, تیال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہریانہ کے اندر جنگل راج ہے. ٹھیک ہے جی, پائن خوش ہوں تھی. اچھا جی, بہت خوش ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایڈریسنگ بی جے پی کیرلا یونٹ ایگزیکٹو کمیٹی ان تھریوونتھرمپورم, بی جے پی کے جو نیشنل پریزیڈنٹ ہیں اور یونین ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر منسٹر ہیں جے پی نڈا صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ کانگریس تو دوسروں کی کمر پہ پگی بیگز پہ چڑھ کے جو ہے اس نے بہت ساری جو ہے سیٹیں جیتی ہیں, ورنہ اس کے اندر اتنا دم کم نہیں تھا کہ وہ کوئی سیٹیں جیت سکتی تھی. بھائی جان کیا ہو رہا ہے, کبھی آپ کا کوئی جو ہے لیڈر کچھ کہہ رہا ہے, کوئی ابھی کچھ کہہ رہا ہے. تو جے پی نڈا صاحب نے کہا جی کہ یہ جو انہوں نے 13 اسٹیٹس میں جو انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں ابھی لوک سبھا الیکشنز میں, اس میں اس کا کانگریس کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ جو ریجنل پارٹیز تھیں ان کی سیٹوں کی وجہ سے یہ لوگ جیتے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ جو گرینڈ اولڈ پارٹی ہے یہ ایک پیراسائٹ ہے. واٹ از دس, یہ پیراسائٹ ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک جھوٹا نیریٹو بی جے پی کے لیے نکالا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تاکہ اس کو ڈیمولش کیا جا سکے جو کچھ بڑے کام کیے ہیں آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں, لیکن جو ہے بی جے پی پھیلتی چلی جا رہی ہے, نہ صرف آندھرا اور تلنگانہ میں اس کو بہت اچھی جیت آئی ہے اس دفعہ, بلکہ کیرلا کے اندر بھی اس نے اپنا اکاؤنٹ کھولا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کا ووٹ شیئر جو ہے تامل ناڈو کے اندر بھی بڑھ گیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ جو کمیونسٹ ہیں انڈر چیف منسٹر پنا رائے وجائن, یہ انڈیا بلاک میں جو کانگریس کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں سہمتی بنائے ہوئے ہیں, وہ اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بڑی بڑی پوزیشنز پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اب جو اس کے ساتھ ساتھ اب جے پی نڈا جس وقت یہ کہہ رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منگلورو سٹی نارتھ کے جو ایم ایل اے بھارت شیٹی, جو کل انہوں نے کہا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں راہل گاندھی کے منہ پہ چانٹے ماروں उसकी शिकायत की थी कांग्रेस ने, तो पुलिस ने आज उनके खिलाफ फाइल केस किया था फॉर हेट स्पीच। और इससे पहले कांग्रेस के जो लीडर्स थे फ्रॉम दक्षिणा कनाडा डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने आज प्रोटेस्ट निकाला था मंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के सामने। कांग्रेस एमएलए इवान डिसूजा जो है उन्होंने कहा कि शेट्टी जो है उसने गांधी को, राहुल गांधी को कुत्ता कहा है, लेकिन खुद तो उसके अंदर कुत्ते वाली कोई भी एक भी खुद की कोई लॉयल्टी किसी के साथ नहीं है। हमारे लीडर को इतना गंदा नाम उसने क्यों दिया? उन्होंने कहा जी मैंने तो खुद एक स्पीच जो है राहुल गांधी जी की 5 दफा सुनी है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए हिंदुओं को कहा है कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए कि लोगों के अंदर डिवाइड पैदा करो। उसने ये नहीं कहा कि हिंदुइज्म जो है वो ये सब कुछ सिखाता है। इसीलिए हिंदू प्रीस्ट जो हैं उन्होंने भी डिफेंड किया है राहुल गांधी जी को कि उसने हिंदू रिलीजन को इंसल्ट नहीं किया है, बीजेपी को किया था कि वो हिंदुओं के अंदर जो है वो डिवाइड पैदा कर रहे हैं। तो इन्होंने गांधी जी को इंसल्ट किया है, इन्होंने कहा जी कि इनको स्लैप्स मारे जाएं, यानी कि चांटे मारे जाएं, और ये जो इनका ये जो जुमले हैं ये इंसल्ट करते हैं 140 करोड़ इंडियंस को और हमारी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट को भी। भाईजान ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्यों पाकिस्तान से सीख रहे हैं बातें, ये क्या बातें कर रहे हैं? जैसे हमारी लड़ाइयां झगड़े होते थे वैसे ही लड़ाइयां झगड़े इधर भी होंगे,
बस ऐसे ही चलेगा।
अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सही है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना, तो अब चलो ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। अच्छा जी, अच्छा जनाब, सारा अली खान साहब जो है अपने अब्बा सैफ अली खान के साथ देखी गई दुबई में, और अब आप कहेंगे कि जी आप डैड भी कह सकते थे, पापा भी कह सकते थे, नहीं, ये खुद अपने अब्बा जी को अब्बा कहती है, तो इसलिए हमने भी अब्बा कहा है, ठीक है जी। तो ये अपने अब्बा सैफ अली खान के साथ दुबई में देखी गई, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट जो का जो टूरिज्म का जो एक एड बन रहा है उसके लिए इनको हायर किया गया था, जिसके के अंदर ये बड़े एडवेंचरस नजर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि सारा अली खान की जो एड के अंदर एक्टिंग है बल्कि उनकी फिल्मों से ज्यादा अच्छी है तो उनको एड ज्यादा करने चाहिए, जिसमें कि वो अपने बाप को बता रही है तुम पोज कैसे करो और कैसे हम जाएंगे और किधर जाएंगे और क्या खाएंगे और बोट राइड्स करेंगे और वाटर स्लाइड्स लेंगे, और फिर उसके बाद वो फौरन दिखा रहे हैं एड में जो 4 मिनट का है कि वो ये सारी तस्वीरें शेयर कर रही है अपनी फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और वो फिर उसके बाद वो एंड पे जाके एक जो रेस्टोरेंट है जो कि ट्यूलिप गार्डन के जैसा जो है डिजाइन किया उसमें जाके ये बैठ जाते हैं, और वो कहती है कि ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिप था, बल्कि परफेक्ट हॉलीडे था। और फिर वो कहती है कि इस हॉलीडे में मुझे अपने वालिद साहब के नए रंग दिखने को मिले। हवा जी क्या बात है, क्या बात है। ये जो आमिर तुम तस्वीर देख रहे हो और ये जो पीछे तुम देख रहे हो ना, ये जो गोला सा जिसमें ये वो आयत सी लिखी हुई है
जी,
तुम्हें पता असल में ये क्या है?
नहीं बता दे।
असल में ये म्यूजियम है
जी,
नेक्स्ट जनरेशन म्यूजियम है ये। जब आप इसके अंदर जाते हैं ना तो जो और 100 साल में होने वाला है उस सारी की इन्होंने ये वहां पे उसके अंदर वो वर्चुअल वो बनाई हुई है। इट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। ये सारा आपको लग रहा है कि ये छोटी सी ट्यूब सी है, ये ट्यूब नहीं है, ये पूरा म्यूजियम अंदर बनाया हुआ उन्होंने, एक फ्यूचर म्यूजियम से है, बहुत जबरदस्त है ये, ठीक है जी। ऐसे और जनाब करण जौहर साहब ने कहा है जी कि क्योंकि बॉलीवुड बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है इसलिए हर कोई जो है हमारे ऊपर लीगल एक्शन लेता फिरता है, इसलिए ये इन तमाम अनएक्सपेक्टेड कंट्रोवर्सीज से बचने के लिए मैंने अपना एक बहुत ही धांसू किस्म का लीगल डिपार्टमेंट रखा हुआ है, ताकि कोई ना तो हमारे ऊपर FIRs ला सके, ना तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर करने पड़े। हमारे पास जब कोई स्क्रिप्ट आता है धर्मा प्रोडक्शंस में या जो हमारा डिजिटल आर्म है धर्मेटिक एंटरटेनमेंट, तो हम ये सारा जो का सारा जो है चीज, ये जो मटेरियल है, ये हम भेज देते हैं लीगल डिपार्टमेंट को। जब वो सारी अपनी छानबीन करके हमको भेजते हैं कि यस वी कैन गो अहेड एंड मेक अ फिल्म, फिर हम फिल्म बनाते हैं। इसलिए हम, इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं, लेकिन हम ये स्ट्रेस नहीं लेना चाहते कि कोर्ट कचहरी में जाएं और हमारा जो काम मेन है उसको हम छोड़ के फजूल काम में अपनी एनर्जीज लगाएं। और कहते हैं जी वैसे तो ज्यादातर लोग जो हमारी चीजों के ऊपर एतराज करते हैं ये वो होते हैं जिनको एतराज नहीं करना चाहिए, लेकिन और उनका कोई काम होता नहीं है, वो दे मेक नॉइज फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस बॉलीवुड के ऊपर, क्योंकि इंडियन सिनेमा को टारगेट करना जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है जी। और अक्षय कुमार साहब की मूवी सरफिरा, हम कहते हैं सरफिरा और इंडियंस कहते हैं सरफिरा, तो सरफिरा जो है उसकी बहुत ही ज्यादा जो है लोग तारीफें कर रहे हैं। सरफिरा के अंदर अक्षय कुमार के साथ परेश रावल और राधिका मदन भी नजर आएंगी, और इसके अंदर एक कैमियो रोल के अंदर तमिल के सुपरस्टार सूर्या जो हैं वो भी नजर आएंगे। ये फिल्म बेसिकली ऑफिशियल अडेप्टेशन है 2020 की जो तमिल मूवी है सूरा राई पुटरू उसकी। फैंस जो हैं इसकी जो ट्रेलर्स और वो चीजें जो उन्होंने देखी हैं उस पे एक्स में उन्होंने आज कहा है कि इंतहाई एंगेजिंग फिल्म है। अक्षय कुमार ने टॉप क्लास फिर से एक्टिंग की है। परेश रावल भी बेतहाशा अच्छी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी सब एक्टर्स भी बहुत अच्छी कर रहे हैं एक्टिंग। लेकिन जो सूर्या आया है छोटे से कैमियो रोल में उसने तो सारे का सारा शो ही जो है वो स्टील कर लिया, चुरा लिया, यानी कि आइसिंग ऑन द केक जो है वो सूर्या है, ये दुनिया कह रही है। और जनाब गोल्स हुए दो, एक ये लायनल मेसी ने और एक ये जूलियन एल्वारेज ने, जिसकी के वजह से कल अर्जेंटीना ने हमारे कनाडा को डिफीट किया 2-0 से टू विन कोपा अमेरिका सेमीफाइनल। लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि 48th रैंक्ड कनाडा जो है उसको सारे के सारे क्राउड ने तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग उस गर्मी और ह्यूमिडिटी में जो बैठे थे उन्होंने चीयर किया। ये मैच जो था मेट लाइफ स्टेडियम में हो रहा था विच इज होम टू NFL न्यूयॉर्क जायंट्स एंड जेट्स, और ये वेन्यू भी है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का भी। सारे लोगों ने कनाडा के लिए बहुत तालियां बजाई, उनको